नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। सरकार ने सभी व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को सोमवार से गेहूं की स्टॉक स्थिति अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक वाहन के खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत। आज गुड फ्राइडे के दिन विश्वभर में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु आज मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपानीडा कार्टेथोंग के साथ खेलेंगी। और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ बातचीत कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन के विदेश मंत्री डॉ जयशंकर के निमंत्रण पर दो दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एक बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। बिल गेट्स के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने एकाधिकार को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण किया है। यह जनता द्वारा और जनता के लिए है। सरकार विभिन्न समुदायों के भीतर उभरती प्रतिभाओं को अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में महिलाएं नई तकनीक अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना बहुत सफलतापूर्वक चल रही है। इन योजनाओं ने महिलाओं की मानसिकता को बहुत बदल दिया है। एआई के दुरूपयोग पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को दे दी जाए तो इसके दुरूपयोग होने की संभावना है। एआई जनित सामग्री पर स्पष्ट वाटरमार्क होना चाहिए जिससे कोई भी गुमराह ना हो।
कोई भी एआई जनरेटेड चीज है उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड। डीप फेक तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है। ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा।
सरकार ने गेहूं के भंडारण को अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आज कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों को 1 अप्रैल से अगले आदेश तक गेहूं की अपनी भंडारण की स्थिति घोषित करनी होगी। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकारी ई मार्केट केंद्र जीईएम पर चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड 4 लाख करोड़ रुपए का सकल कारोबार हुआ। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2 गुना है। आज नई दिल्ली में जीईएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीके सिंह ने संवाददाताओं को बताया कि इससे जीईएम पोर्टल की अनूठी डिजिटल क्षमताओं और कार्यक्षमताओं का पता चलता है। इससे पुष्टि हुई है कि सार्वजनिक खरीद में ज्यादा दक्षता, पारदर्शिता और बिना किसी बाधा के कारोबार होता है। उन्होंने कहा कि इस सकल कारोबार में लगभग 50% योगदान सेवाओं की खरीद का है। दूरसंचार विभाग डीओटी ने नागरिकों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया है कि लोगों को ऐसे कॉल आ रहे हैं जिनमें दूरसंचार विभाग के नाम पर कॉल करने वाले धमकी दे रहे हैं कि उनके सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए जाएंगे या उनके मोबाइल नंबरों का किसी अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
दूरसंचार विभाग ने विदेशी मूल के मोबाइल नंबरों से ठगने वाले व्हाट्सएप कॉल के बारे में लोगों को अवगत कराया है। विभाग ने एक बयान में कहा है कि साइबर अपराधी ऐसी कॉल के जरिए साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराने की कोशिश करते हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया कि उसके द्वारा ऐसी कॉल नहीं की जाती है और इससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है और ऐसी कॉल आने पर कोई भी जानकारी साझा नहीं करने को कहा गया है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को संचार साथी www.sanchar.gov.in के पोर्टल पर किसी भी ऐसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की सलाह दी है। इसके अलावा दूरसंचार विभाग ने साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार होने की स्थिति में साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करने की सलाह दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये दुर्घटना लगभग आधी रात को हुई जब जम्मू से श्रीनगर जा रहा यात्री वाहन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैटरी चश्मा के निकट 1000 फुट गहरी खाई में गिर गया। राहत और बचाव कार्य के लिए रामबन से पुलिस, राज्य आपदा मोचन बल और नागरिक त्वरित मोचन टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। अब तक गहरी खाई से 10 लोगों के पार्थिव शरीर निकाले गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराज्यपाल ने जिला प्रशासन और मंडलायुक्त को मृतकों के परिजनों को सभी तरह की सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में शोकग्रस्त परिवारों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एसयूवी वाहन के रामबन जिले में खाई में गिर जाने से 10 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तेलंगाना के पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त पी राधाकृष्ण और एक अन्य पुलिस अधिकारी से पुलिस ने फोन टैपिंग मामले और कुछ कंप्यूटर सिस्टम और आधिकारिक डेटा को नष्ट करने के मामले में कल पूछताछ की। पूर्व डीसीपी तत्कालीन हैदराबाद पुलिस की एक शाखा के कमिश्नर टास्क फोर्स का हिस्सा थे। विशेष खुफिया ब्यूरो के डीएसपी डी प्रणीत राव को इस महीने की शुरुआत में कई व्यक्तियों की प्रोफाइल विकसित करने और अवैध रूप से निगरानी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था और गिरफ्तार किया गया था। बिहार में विपक्षी महागठबंधन ने आज 40 लोकसभा क्षेत्रों के कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के बीच सीटें साझा करने की घोषणा की। सीटों के बंटवारे के अनुसार लालू प्रसाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस अपने 9 उम्मीदवार उतारेगी, जबकि वाम दलों को 5 सीटें दी गई हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सीपीआईएम और सीपीआई एक एक सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे। महागठबंधन के नेताओं ने पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों के बंटवारे की घोषणा की। कुछ सीटों को छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव में इन पार्टियों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों की सीटों पर भाग्य आजमाएगी। राष्ट्रीय जनता दल के 24 उम्मीदवारों में से 4 ने पहले चरण के अंतर्गत औरंगाबाद, नवादा, जमुई और गया सीटों पर पहले ही नामांकन पत्र भर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा जीती हुई किशनगंज की सीट फिर से पार्टी के खाते में आई है। वहीं कटिहार, समस्तीपुर, पटना साहिब, सासाराम, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और महाराजगंज कांग्रेस की कोटे की 8 अन्य सीटें हैं। वाम दलों के समूह में सीपीआई माले को नालंदा, काराकाट और आरा की सीट प्राप्त हुई है। वहीं गठबंधन के 2 अन्य वाम दलों की मांग पूरी करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने सीपीएम को खगड़िया जबकि सीपीआई को बेगूसराय की सीटें दी हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
असम में विभिन्न राजनीतिक दलों के केंद्रीय नेताओं के लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचने पर चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। असम में 14 सीटों के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण के अंतर्गत 6 सीटों पर उम्मीदवारों ने 107 नामांकन पत्र भरे, जो सभी वैध पाए गए। मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 4 जून को कराई जाएगी।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
जम्मू कश्मीर में युवा वर्ग, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवा, अगले महीने से शुरू होने वाले लोकतंत्र के उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश के 5 लोकसभा क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारू मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं।
केंद्र शासित प्रदेश में मतदान 5 चरणों में होगा। उधमपुर संसदीय सीट के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि जम्मू संसदीय क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। कश्मीर घाटी में तीसरे चरण यानी अनंतनाग राजौरी संसदीय सीट के लिए मतदान 7 मई को होगा। इसके बाद 13 मई को चौथे चरण में श्रीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान होगा, जबकि 5वें चरण में बारामूला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 20 मई को होगा। अब तक उधमपुर संसदीय सीट के लिए भाजपा, कांग्रेस, डीपीएपी और अन्य दलों के 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह कुछ ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जिनके बीच पहले चरण में मुकाबला होगा। दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च कल जारी की गई। जम्मू कश्मीर में 86,94,992 पंजीकृत मतदाता हैं, जो 2019 के चुनावों की तुलना में लगभग 8 लाख अधिक हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में इस चुनाव के लिए 11,629 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील को।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल समाचारों के साथ हैं सौरभ अग्रवाल।
पीवी सिंधु मैड्रिड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज थाईलैंड की सुपानिडा कैटेथोंग का सामना करेंगी। कल सिंधु ने प्री क्वार्टर में ताइवान की हांग यू सुन को 21-14, 21-12 से हराया। पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के जे आरिफ और आर के याप से होगा। कल भारतीय जोड़ी ने स्कॉटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमले और मैथ्यू ग्रिमले की जोड़ी को 21-17, 21-19 से पराजित किया। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मैच आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया। मियामी ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन की सर्वोच्च वरीयता प्राप्त जोड़ी पुरुष डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में उन्होंने स्पेन के मार्सेल ग्रेनोलर्स और अर्जेंटीना के होरेसियो जेबालोस की चौथी वरीय जोड़ी को 6-1, 6-4 से पराजित किया। शनिवार को फाइनल में भारतीय ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त अमरीका के ऑस्टिन कैजिसेक और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी से होगा। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
आज गुड फ्राइडे के दिन विश्वभर में गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। यीशु मसीह को इसी दिन सूली पर चढ़ाया गया था। उन्होंने मानवता के प्रति प्रेम के लिए कुर्बानी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यीशु मसीह के बलिदान को याद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने नई दिल्ली में यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी आवश्यकता है और सरकार सभी गांवों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचा रही है। सरकार ने सभी व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को सोमवार से गेहूं की स्टॉक स्थिति अनिवार्य रूप से घोषित करने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में एक वाहन के खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत। आज गुड फ्राइडे के दिन विश्वभर में प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु आज मैड्रिड स्पेन मास्टर्स के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड की सुपानीरा काटेथोंग के साथ खेलेंगी और आईपीएल क्रिकेट में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।